अच्छा नंबर 12। ओम नमः, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैशायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमि ऊणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीर्घसौवर्थम् कम्मपदे सविहत्तिम् गोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 47 पर आ गए हैं। 47
विशेषार्थ
हमने कल पढ़ा था, अभी जघन्य का प्रकरण है। स्पर्शन देख रहे थे हम, उत्कृष्ट का हमने स्पर्शन देखा था, अब जघन्य में देख रहे हैं। देखो निर्देश दो प्रकार का है, मिला ना 47 में, विशेषार्थ के नीचे बीच वाला जो विशेषार्थ है उसके नीचे जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार है, ओह और आदेश। ओह से 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उनकी संख्या अल्प है तो लोक का असंख्यात भाग घटित होता है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, ये वर्तमान का क्षेत्र, क्योंकि उनकी सत्ता वाले जीव असंख्यात ही है। त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग विहार की अपेक्षा और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र मारणांतिक उपपाद आदि की अपेक्षा स्पर्शन किया है। विशेषार्थ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति एकेन्द्रियादि जीवों के भी संभव है, जघन्य भी और अजघन्य भी। ऐसा क्यों कहा? कहाँ होता है वो जघन्य और अजघन्य? अजघन्य तो सर्वत्र होगा। जघन्य हमने देखा ना, सफित कर्मोशिक से आया है और फिर वो तो हाँ एकेंद्रीय 66 सागर बिताए और फिर एकेंद्रीय में या कहीं पर मिथ्यात्व में गया और दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना की। तो उद्वेलना का अंतिम समय जो है वो किसी भी भाव में हो सकता है, तो ये बात कहीं पर भी घटित हुई। तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है ही, इसलिए इनकी दोनों प्रकार की प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, त्रस नाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, ये विहार करने वाले देवों की अपेक्षा और सर्व लोक प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। मारणांतिक में मात्र देव नहीं लेना है, तो सभी लोग सभी सर्वत्र लेना, क्योंकि उसकी सत्ता वाले सर्वत्र पाए जाते हैं। आदेश से नारकियों में जघन्य की बात अभी गतियों में बताएंगे। 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि नारकी ही लोक के असंख्यात वे भाग में रहते हैं, तो यहां तो जघन्य कहो या उनके लिए जघन्य अभी देखना। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात वे भाग, ये तो वर्तमान का, और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जय बेन, ये कैसे होगा? हाँ, सातवें नरक के नारकी है वो मारणांतिक करेंगे, या वहां उपवाद करने वाले जो है, यहाँ तीरियंच मर गए और नरक में जा रहे हैं तो नारकी कहलाएंगे उसको। तो वो पहला जो उसका दंड है उपवाद वाला, मध्य लोक से सातवें नरक तक आत्मा के प्रदेश फैले हैं, तो उसको कहेंगे हम सर्वत्र उनके प्रदेश है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। सातवीं के लिए तो 6 राज्य घटित होगा, ऊपर की पृथ्वी जितनी वो पृथ्वी नीचे है उतने उतने राजू प्रमाण घटित करें, और पहली पृथ्वी के लिए तो लोक का असंख्या तो भाग कहेंगे, क्योंकि 1,80,000 वो तो लोक का असंख्या तो भाग होगा, उसको 1/14 राजू नहीं कहेंगे हम, वो दूसरी पृथ्वी के लिए कहेंगे 1/14 राजू। पहली पृथ्वी के लिए लोक का असंख्या तो भाग, पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है। दूसरी से लेकर 6 तक की पृथ्वियों में 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। जघन्य के लिए क्षेत्र के समान यानी लोक का असंख्यात्व भाग, और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग तथा क्रम से त्रसनाली के कुछ कम 1, कुछ कम 2, कुछ कम 3, कुछ कम 4 और कुछ कम 5/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। इसी का विशेषार्थ देखते हैं। नारकियों में और उनके अवांतर भेदों में, नारकी के अवांतर भेद का अर्थ होते सातवें नरक वाले, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। लेना करो, लेन हुआ, लेना चाहिए। आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। अब तीर्यंच गति में देख रहे हैं। तीर्यंच गति में तीर्यंचों में 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग ये वर्तमान का और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है अतीत काल की अपेक्षा, क्योंकि उसके जघन्य और अजघन्य एक इंद्रियों में भी होते हैं। ख्याल में है ना बात? जहां जघन्य, अभी अतिजेंचों की बात है, अब मनुष्यों की बात करेंगे। जघन्य कहाँ है? जहां कोई क्षपणा में वगैरह जो होते हैं मिथ्यात्व का जघन्य, तो हमेशा ही लोक का असंख्यात्व ही भाग रहेगा। अब ये कहा किसकी बात चल रही? तिरियंचों की बात चल रही, और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही जो उद्वेलना में होता है। तो लोक के किसी भी कोने में होगा वो जीव, तो अतीत काल में कहीं ना कहीं वो जीव स्थित है, तो उसकी अपेक्षा अगर हम लगाएंगे तो पूरा लोक हो जाता है। सब पंचेंद्र तीर्यंच और सब मनुष्यों में 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्र जब वो जघन्य कर रहे हैं तो अपने अपने उनका रहने का ठिकाना तो मध्य लोक में है। पंचेंद्र तीर्यंच की बात चल रही है यहाँ पर, और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पंचेंद्रिय अजघन्य करते हैं तो पूरा लोक, और पंचेंद्रिय तीर्यंच जघन्य करते हैं तो अपना अपना ठिकाना है, नहीं लोक का असंख्यात्व भाग। ऐसा क्यों मंजू भाई, मालूम नहीं ना? जघन्य के लिए क्या कहा? लोक का असंख्यात्व भाग, और अजघन्य के लिए क्या कहा? पूरा लोक। क्यों? हाँ, जघन्य करने वाले संगी पंचेंद्रिय। हाँ, वो बात सही है। अजघन्य भी उन्हीं में बता रहे हैं, अजघन्य की बात भी पंचेंद्रियों में ही बता रहे हैं। हाँ, अतीत कैसे घटित करेंगे? क्या किया हुआ? हाँ, नहीं, उद्वेलना की कहाँ, 26 प्रकृतियों की बात चल रही है, उसकी कहाँ उद्वेलना होती है? हमने पूछा पंचेंद्रियों में जघन्य करने वाले लोग के असंख्याते भाग, अतीत काल की भी अपेक्षा, और पंचेंद्रियों में अजघन्य करने वाले पूरे लोग। हाँ, मारणांतिक लगाओ ना उसमें, पंचेंद्रिय मारणांतिक उपपाद की भी होगा ना, अपन मारणांतिक तो ज्यादा टाइम भी रहता है एक बार, और पूरे लोक में कहीं ना कहीं वो जन्म लेंगे, त्रिरंज पंचेंद्रिय त्रिरंज, एकेंद्रिय में जाएगी सर्वत्र, एकेंद्रिय में भी आएंगे, उपपाद मारणांतिक दोनों घटित हो गए। तो इस तरह से उसको घटित करना है अजघन्य वाले। जघन्य तो जघन्य करने की अवस्था में उसका मारणांतिक नहीं होगा, क्षपित कर्मौषिक विधि से आया है वगैरह वगैरह जो हमने घटित किया है। नहीं समझे? तिर्यंच गति में जघन्य, लास्ट में था ना, 387 या आगे होगा। मेरे पेजेस क्या है, उल्टे पुल्टे है सारे। हाँ, तिर्यंच में 390, 26 प्रकृतियों में से देखो, अभी हम पहले में पहले, हाँ, जघन्य मिथ्यात्व का जघन्य किसके होता है? तिर्यन चौम में देखो, अभी हम 390 पेज है छठवीं पुस्तक के, देखो, क्षपित कर्मौषिक जीव विपरीत जाकर तीन पल्ले की आयु में तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, अतिशीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी की विषय योजना की, और तीन पल्ले तक समय दृष्टि रहा, और वहां से निकलने के अंतिम समय में उसका मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश 70 में होता है। एक ही समय के लिए होगा अंत में जाकर। अब ये अंत में जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की अवस्था में मारणांतिक कहाँ कहाँ करेगा? देवों में करेगा ना, ऐसे भी ये देवों में ही जाने वाला है भूभूमि का, तो सौदर में ईशान में ही करेगा और कहीं नहीं करेगा। मिथ्या दृष्टि जो अजगन्य वाला था वो कहाँ तक मारणांतिक कर सकता है? पूरे लोक में कहीं भी। और मिथ्यात्व का जघन्य किसके समय दृष्टि के है, अंतिम समय में है, तो वो मारणांतक करेगा भी तो भी सौधर्म ईशान में करेगा। अब दूसरे देखो, मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात्व कर्म की जघन्य प्रदेश विभक्ति है, यदि मिथ्यात्व में ले जाएंगे तो उसका अजघन्य हो जाएगा। हमें मिथ्यात्व को जघन्य ही रखना है, तो तीन पल्ले तक समय दृष्टि रहा है तो उसके कारण उसके मिथ्यात्व के उतने परमाणु फिर गए हैं, समय दृष्टि ही रखना है उसको। यानी उसने समय को प्राप्त किया, विषय योजना की, और उसी अवस्था में वो पूरे थ्रू आउट रिमेनिंग जो तीन पल्ले उतरा रहा, और उसके अंतिम समय में उसका मिथ्यात्व का जगन्य होगा। अब अनंत अनुबंधी का जगन्य ऐसे ही घट कर सकते हैं ना हम? अक्षपित कर्मांशिक आया, वहां आया, फिर उसने संयोजना विसंयोजना की, संयोजना की, फिर विसंयोजना की, इस तरह से। हाँ, अभी आगे त्रिवेद नपुसक वेद का जघन्य क्षपित कर्मांशिक शायिक समय दृष्टि, और वो तीन पल्ले की आयु के अंतिम समय में उसके जघन्य होगा। यानी ये जो बात है, जघन्य जो घटित कर रहे हैं वहां के समय दृष्टियों में घटित हुआ है। समय की समय मिथ्यात्व का तो जघन्य कहीं भी होता है, तो वो तो हम पूरा लोग कह ही देते हैं। अब यहां आते हैं, ये तीरंज गति में पढ़ रहे थे, लास्ट लाइन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की लास्ट दो लाइन। जघन्य प्रदेश भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, ये तो वर्तमान का क्षेत्र, और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो तो उद्वेलना किसी भी पर्याय में हो सकती है, इसलिए सर्वत्र ले लिया उसको। अब देवगति में मनुष्य गति का ऊपर बता दिया, पंचेंद्रिय तीरंज और सब मनुष्यों में ये लोक का असंख्यात भाग बता दिया था उन्होंने, इसलिए डायरेक्ट अभी देवगति की बात करें। 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने, लोक के असंख्यात भाग, और त्रसनाली के कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। नहीं, कुछ मेरा ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ, यानी 26 के जो जघन्य है वो लोक का असंख्यात भाग, विहार की अपेक्षा कुछ कम 8 और कुछ कम 9 कैसे, मारणांति की अपेक्षा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, त्रसनाली के कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। देव में भी ऐसे घटित करेंगे हम मिथ्यात्वादी की, लास्ट में अंत में उसको घटित करना है। हाँ, विशेषण यहाँ सामान्य देवों में अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति दीर्घ आयु वाले देवों में होती है, और उनका स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अनंतानुबंधी की जघन्य कैसे घटित करना? विसंयोजना, लास्ट में विसंयोजना करेगा ना वो, पहले विसंयोजना करेगा तो उसकी जघन्य कैसे घटित होगी? यानी उसको थ्रू आउट समय दृष्टि रखना है। देखो, अभी हम निग्रहवेग की बात करेंगे। 31 सागर में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने पर वहां समय को प्राप्त किया, उसने विसंयोजना की, मिथ्यात्व में गया, अंतर्मूर्त में फिर समय को प्राप्त किया। यानी अभी उसके साथ सत्ता में छोड़े थे, अंतर्मूर्त में जितना बंद किया, संक्रमण हुआ उतने ही है। अब फिर समय दृष्टि हुआ, अब थ्रू आउट वो समय दृष्टि रहा, और नहीं मिथ्यात्व में नहीं, निकलते वक्त विसंयोजना की, यदि मिथ्यात्व में है तो फिर संयोजना होकर ज्यादा हो जाएगा, हमको जघन्य करना है। देखो, शुरू में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, या ऐसा भी ले सकते हैं वैदिक समय दृष्टि जन्मा, और अनंत अनुबंधी की विसंयोजना की अंतर्मूर्त में, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, संयोजना की अंतर्मूर्त में, फिर समय को प्राप्त किया। अब जितना आयु उसकी दीर्घ, वहां तक समय दृष्टि रहा बिना विसंयोजना के, और लास्ट में जाके विसंयोजना की, तो जब विसर्जना का अंतिम समय है वहाँ उसका जगन्य होगा। अब इमीडिएटली नहीं मरेगा, जो कुछ यथायोग्य काल में मरेगा अंतर्मूर्त में। हमें अनंतानुबंधी का जघन्य घटित करना है। इसलिए दीर्घ आयु वाले देवलिए उनका स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, इसलिए उनकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रमाण कहाँ है, शेष कथन सुगम। ऐसे जीव तो लोक के असंख्यात विभाग में पाए जाएंगे और उसमें कोई विहार वगैरह कुछ नहीं घटित होगा, क्योंकि हमने 31 सागर में घटित किया भी। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में 22 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में 22 की जघन्य प्रदेश विभक्ति, हमेशा 26 लेते हैं ना, और जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5, ये तो स्वयं विहार करके जाए तो कुछ कम 8, दूसरे के साथ विहार करे तो, और कुछ कम 9/14 मारणांतिक की अपेक्षा क्षेत्र का स्पर्शन किया है। और जघन्य के लिए, और जघन्य के लिए तो लोक का असंख्यात विभाग, वही वो क्षपित कर्मोशिक रूप से, बाकी सब विधि बताना वहां। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, यही वही वो उद्वेलना वाला लेना है, तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ज्योतिषों में क्या हो अलग निकाला, नहीं जाते बहुनत्रिक और सौधर्म मिशन जाते हैं, पांचों ही जाते हैं। देखो क्या कहते हैं, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अजघन्य तो बता दिए, विशेषता की ज्योतिषी देवों में उनकी वो मारणांतिक नहीं कहा है, और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्शन किया, यहां भी मारणांतिक नहीं लिया। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा त्रसनाली के कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, उसी का विशेष आधार। देखो उक्त देवों में एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते समय अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति नहीं होती, क्योंकि अनंतानुबंधी की जघन्य कब होती है, जब दीर्घ आयु वाला रखना और आयु के अंत तक वो सम्यक दृष्टि रखना है, और वहाँ उसने विसंयोजना की हुई है। तो ऐसा जी अभी विसंयोजना वाला जो है तो एकेंद्रियों में नहीं जाएगा ना सम्यक्त्व के साथ, इसलिए एकेंद्रियों में मारणांतिक करने वालों के जघन्य नहीं होता, ऐसा कहा उन्होंने। ख्याल में आई बात, वो तो नीचे मनुष्य में आएगा। इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियों की जघन्य प्रदेशी भक्ति वाले जीवों का स्पर्शन त्रसनाली के कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण नहीं कहा है, शेष कथन सुगम है। ज्योतिषी में भी वहां तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य वो तो सब में होगा, तीनों में होगा ना। उद्वेल ना करते हुए उसमें आना चाहिए, इतनी बात है ना। अनंतानुबद्धि में तो समझ सकते हैं, ज्योतिषी में समय समय मिथ्यात्व को क्यों छोड़ा? भवनवासी अंतर में नहीं छोड़ा है, ज्योतिषियों में खास स्पेशली बता दिया। समझ में नहीं आए क्यों? क्योंकि ज्योतिषियों को ही अलग निकाला है, उसमें है क्या देवों में कुछ अलग भवनत्रिक के बारे में? 90 पर देखा था ना हमने, 89 पर होगा। देवों में कुछ अलग नहीं बताया ना, या बहुनत्रिक एक साथ लिया था क्या? क्या है बाईस प्रकृतियों की ज्योतिषी की आयु कितनी है? मैक्सिमम यानी भवनवासी की ज्यादा है क्या? भवनवासी गंतर की, इसलिए वहां नहीं घटित किया होगा जघन्य। फिर भी उनके अपने लिए जघन्य तो हो सकता है, पता नहीं, आगे पढ़ेंगे। अब नीचे सौधर्म और ईशान, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों में सामान्य देवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यानी वहां जाकर भी बिहार में भी वो समय दृष्टि भी रहते हैं और अनंतानुबंधी की विसर्जना भी करते हैं, ऐसा उसका अर्थ हुआ। शेष कथन सुगम है। देखो विशेषत सौधर्म द्वीप में विहार व स्वस्थान आदि के समय भी ये लिखा ही है अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति बन जाती है। ये कैसे घटित किया था हमने? शुरू में उसने विसर्जना की अंतर्मूर्त के लिए, मिथ्यात्व में आया, फिर समय तो प्राप्त किया, लंबी आयु तक समय दृष्टि ही रहा, और लास्ट में उसने विसर्जना की। तो विसंजना के अंतिम समय में उसका जगन्य होगा। तो ये जो कार्य है तो वहां विहार करके गया है उस समय भी हो सकता है, ये बात बताने का। इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन त्रसन नाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण भी कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में बाईस प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यह अजघन्य की बात नहीं उन्होंने घटित की ना, सौधर्म ईशान में अजघन्य नहीं बताया था। अजघन्य में तो मारणांतिक भी होगा ना उनका, हाँ हाँ। सनत कुमार से सहस्रार तक देव में 22 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अब यहाँ 9/14 मारणांतिक वाला नहीं लेना, सौदर में ईशान तक के ही जीव एक इंद्रिय में जाते हैं, मरकर जा सकते हैं, इसलिए उनमें तो अजघन्य के लिए मारणांतिक की अपेक्षा लगाएंगे। अब ये सनत कुमार में अजघन्य प्रदेश भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में 22 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण त्रस नाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो मध्य लोक तक ही आते हैं विहार करके, इसलिए 6/14 का। इनसे ऊपर के देव में क्षेत्र के समान भंग है, वो अपना विहार नहीं करते तो लोक का असंख्यात भाग होगा। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा क्या क्या देखा हमने, याद है? भंग देखे पहले, फिर भागा भाग देखा, परिमाण देखा, क्षेत्र देखा, स्पर्शन देखा, काल अभी देखेंगे, नाना जीवों का काल देखेंगे। एक जीव की अपेक्षा हमने स्वामित्व, काल और अंतर देखा था। अब नाना जीवों की अपेक्षा से काल का अर्थ क्या होता है? हाँ, निरंतर उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट, कितने काल तक रहेंगे कोई ना कोई जीव, कम से कम कितना काल और अधिक से अधिक कितना, या सदा काल रहेंगे? जैसे अनुत्कृष्ट वाले तो हम कहेंगे सदा काल, उत्कृष्ट वाले सदा काल नहीं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कभी ऐसे भी जीव होंगे जिसको उत्कृष्ट है ही नहीं। तो लगातार रहने का काल भी बताएगी, बाद में अंतर भी घटित करेंगे। अजघन्य वाले और अनुत्कृष्ट वाले तो सदाकाल रहेंगे, ख्याल में आते हैं ना? अब हम यहाँ देखेंगे, सर्व कर्माणम नाना जीवे ही कालो कायवो, सब कर्मों का नाना जीवों की अपेक्षा काल करना चाहिए। काल करना चाहिए, नहीं काल निकालना चाहिए, जानना चाहिए। यह सूत्र सुगम है। अब इस सूत्र से सूचित हुए अर्थ की उच्चारणा बतलाते हैं। ये तो करना चाहिए इतना ही बता दिया, उच्चारणा जाने वो लगा के बता दिया। यथा काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नाना जीवों की अपेक्षा हर समय रहे 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 तो कितने काल तक रह सकती है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 12 कक्षा और 8 9 कक्षाओं की, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा काल एक समय है। ऐसे कोई ना कोई एक समय है, फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा लगातार करे तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीवों को वो तो उत्कृष्ट एक के बाद होता रहेगा। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल घटित होगा। कितना देखा हमने, आवली का असंख्यात भाग। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल सर्वदा है। जब इन्हें अनुत्कृष्ट सदाकाल क्यों कहा, ये तो अनंत में अनंत जीवों में पाया जाता है अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा ही कायम रहेंगे ही। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व चार संज्वलन और पुरुष वेद की, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। देखो क्योंकि हमने देखे थे चार संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य कब होता है, सपना में होता है, तो वह तो संख्यात जीव है। और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट वो भी सपना में होगा, यथायुग्य समय में। अभी हम जघन्य देख के आए ना, इसलिए उसकी याद है। ये हमको उत्कृष्ट देखना था। और अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा है। विशेषार्थ, सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति एक समय तक हो और द्वितीय समय में न हो, यह संभव है। इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जघन्य काल एक समय कहा है। यानी भले एक या अनेक जीव एक साथ उत्कृष्ट कर रहे तो दूसरे समय में एक भी जीव न करे, तो यह तो संभव है कि एक ही समय के लिए नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट हो। तथा मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति नाना जीवों की अपेक्षा लगातार असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण का उत्कृष्ट, इससे अधिक लगातार और लंबा नहीं हो जाएगा। और शेष सात प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर संख्यात समय तक हो सकती है। कौन से सात लिए, चार संज्वलन पुरुष वेद और सम्यक समय मिथ्या। इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवों की अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता जब किसी प्रकृति की सत्ता ही न हो, इसलिए सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा कहा है। लोगों को डर लगता है ना, सब अभी मोक्ष चले जाएंगे तो कौन रहेगा, क्यों बे? ऐसा कभी नहीं होगा कि मोहिनी, यहाँ तो मोहिनी की अकेले की बात चल रही, सब कर्मों में ऐसे घटित करना। अब आदेश से, नारकियों में 27 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा है। देखो हम उत्कृष्ट देख रहे थे ना, मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट गुणित कर्मांशिक वो अंत में, भव के अंत में एक समय के लिए हो सकता है, एक जीव एक समय के लिए, ऐसे एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे लगातार हो तो आवली का असंख्यात्व भाग। सम्यक तो प्रकृति का भंग ओघ के समान है। संख्या समय ये कैसे लेना? हाँ, मनुष्य में से जो क्षायिक करते करते कृतकृत्य वेदक रूप से आया है नरक में, आने पर पहले समय में होगा, तो वहां क्षायिक करने वाले ही समय संख्यात होते हैं। अब उसमें से जिसने पहले नरकायु बांधी हो ऐसा चाहिए, और उसमें भी कृतकृत्य वेदक के साथ जन्मने वाले और थोड़े हो गए, क्योंकि हो सकता है क्षायिक हो गए पर क्षायिक पूरा करके गए ना, क्षायिक करके बहुत वो मनुष्य में उन्होंने बिताया काल क्षायिक होने के बाद, बाद में यहाँ आए, तो हमें कृतकृत्य वेदक वाला ही चाहिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी और रेयर हो जाती है। तो एक के बाद एक दूसरे समय में कोई करे, फिर तीसरे समय में, तो संख्यात ही हो सकते हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ये कृतकृत्य होते हैं। दूसरी से लेकर सातवीं तक प्रत्येक पृथ्वी में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल सर्वदा है। सामान्य से नारकियों में और पहली पृथ्वी में, तो क्या सामान्य नारकी में नहीं आया? हाँ, सामान्य नारकियों में जो लिया हमने वो पहली पृथ्वी की अपेक्षा थी, और सेपरेटली बताएंगे तो मात्र पहली पृथ्वी में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यक प्रकृति का भंग ओघ के समान बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है, इसलिए वहां संख्या समय काल होगा कंटिन्यूअसली, ओघ के समान यानी संख्या समय ये समान है। तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवों में पहली पृथ्वी के समान भंग है। पंचेंद्रियों में किसको छोड़ा मंजू? योनिमति। क्यों? कृतकृत्य वेदक वहां नहीं उत्पन्न होते, बोल रहे पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेषार्थ प्रारंभ के तीन प्रकार के तिर्यंचों में, ये तीन कौन से? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त। कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उसके समान जानने की सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौ कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट कब होगी? गुणित कर्मांशिक रूप से आया है। यहाँ उत्पन्न होने के पहले समय में होगा ना, उसका गुणित कर्मांशिक से आया है। मनुष्य गति में तो सब, जब मनुष्यों में कहते तो सामान्य सब आ गए, वो भी आ गए। हाँ, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि आवली के असंख्यात यानी असंख्यात है समय, तो वो तो अपर्याप्तों को इंक्लूड करेंगे तो ही संभव है। तो मनुष्य अपर्याप्त जीव कितने हो गए अधिक से अधिक? कितने असंख्यात? यहाँ लगातार ही आवली का असंख्यात भाग लिखा है, तो ये जन्मने का, और वो भी कैसे? उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के साथ कंटिन्यूस जन्मे, तो मूल में ज्यादा है ना। मेरे ख्याल से पल्ले के असंख्यात भाग है, कितना है मनुष्य अपर्याप्तों की संख्या? पंद्रह कंटिन्यूस उत्पन्न होने वाले पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, और यहाँ उत्कृष्ट के साथ उनमें जन्मने वाले, ये तो और भी रेरिटी है। हाँ, मगर जैसे मनुष्य गति के लिए जो है वो वही हो, सामान्य मनुष्यों में जो होगा या पर्याप्त मनुष्यों में भी होगा उतना ही इसमें होगा। किसका? नरक में से आने वाला कोई मनुष्य में आएगा ही नहीं, ना पंचेंद्रिय मनुष्य में आएगा, ना अपर्याप्त मनुष्य में आएगा, वो तो तिर्यंच में जाएगा। तो तिर्यंच में से फिर एकेंद्रिय में जाएगा, क्योंकि त्रस पर्याय के लास्ट में रखा था उसको, एकेंद्रिय के एक दो भाव करके फिर वापस आएगा। तो या तो मनुष्य अपर्याप्त में जन्म ले सकता है, मनुष्य पर्याप्त में जन्म ले सकता है। तो उसी के पास उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होगी। तो ऐसे वाले लगातार आते रहे तो आवली का संख्या होगा, उसमें तो अपर्याप्तों को लेगे तो ही घटित होगा, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य ही संख्यात है, उसमें लगातार कोई आएगा तो संख्यात समय होगी। मनुष्य गति में तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी लाइन, अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व चार संजोलन और तीन वेदों की, उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व तो क्षपणा में उनकी क्षपणा में होते दर्शन मुंह की, चार संजोलन उनकी अपनी अपनी क्षपणा में यथायोग्य समय पर होती है, तीन वेदों में भी। देखो, तीन वेदों में जो उत्कृष्ट काल जो है वो संख्यात समय है, तीन वेदों का जो उत्कृष्ट घटित करना है तो अपना अपना वेद का गुणित कर्मांशिक से आया है, अपने अपने वेद को पूरा कर दिया है और मनुष्यों में उत्पन्न हुआ है। तो कोई तो भोगभूमि से फिर देव में जाकर आएगा, ईशान वाले वहां से आएंगे नपुसक वाले, और पुरुष वेद वाले भी सौधर्म से आएंगे। तो देव में से आने वाले मनुष्यों में पर्याप्तों में ही आएंगे, तो पर्याप्त संख्यात है इसलिए वो भी संख्यात हो। अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में 28 प्रकृतियों की, उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। यही बात है ना, ये अभी हमने जो देखा है सभी की उत्कृष्ट ली है, यानी गुणित कर्मांशिक वाला लिया है, और मनुष्य पर्याप्त ही संख्यात है तो उसमें लगातार उत्पन्न होने वाले भी संख्यात ही हो गए। ख्याल में ये बात, अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनंत कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, यानी उत्कृष्ट के साथ जन्मने वाले लेना है और अनंत से लेना है हमको। अनंत से लेना है तो मिथ्यात्व में लेना है, गुणित कर्मांशिक वाला लेना है, नहीं समझे? आनंद से लेकर सर्वाधिक सिद्धि तक यही बात है ऐसा बताया। तो ऊपर के तो अनुदिश अनुत्तर को हम छोड़ देते हैं, ग्रहवेग तक की बात करेंगे, आनंद प्राण तारण अच्युत और ऊपर। तो हमें गुणित कर्मांशिक वाला चाहिए और वहां पहला समय घटित करना है। कल हमने बात उठाई थी इसको, तो मनुष्य में से ही आना होना चाहिए, क्योंकि तिर्यंच वहां जा सकते हैं पर समय दृष्टि तिर्यंच आएंगे। आनत प्राणत आरण अच्युत, उसमें तिर्यंच भी उत्पन्न होते हैं परंतु वो तो समय दृष्टि तिर्यंच उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में जाने वाले मनुष्य ही होने चाहिए, और वो भी द्रव्यलिंगी मुनि कल हमने पढ़ा, गुणित कर्मांशिक से आया है, छोटी आयु में उसने द्रव्यलिंग धारण किया है और मरकर वहां उत्पन्न हुआ, ऐसा जीव लेना है। इसलिए उसका संख्यात क्यों कहा, ये बात उसकी घटित होती है। विशेषार्थ, सामान्य मनुष्यों में जिस प्रकार ओघ में घटित करके बतलाए हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट कान इनमें अपने स्वामित्व के अनुसार संख्या समय ही प्राप्त होता है। हमने देखा था ना, वो ईशान से आया है, कोई कहां से आया है, तो पहले समय में घटित होगा। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों की परिगणना यहाँ सम्यक्त्व आदि के साथ की है। और पुरुषवेद की उत्कृष्ट कब होती है? देव में तो पूर्ण करके आया है, मगर यहाँ उत्पन्न हुआ है और मनुष्यों में उसने क्षपणा की। तो जब स्त्रीवेद और नपुंसक वेद, उसमें स्त्रीवेद की अंतिम फाली जब संक्रमित होती है तब वो भी संख्यात ही हो गए ना, क्षपणा करने वाले भी संख्यात है। हाँ, मगर ये मनुष्यों में अगर हमको घटित करना है, वहां बहुभूमि के बाद देव में चला जाएगा, मिनिमम आयु वाला देव होगा और फिर वहां से मनुष्यों में आया, तो पहले समय में घटित होगा। ये संख्या समय होने से उनको सबको एक साथ बता दिया, उनमें कॉमन क्या है, संख्या समय इतनी बात समान है। मनुष्य पर्याप्त विशेषार्थ की चौथी लाइन, मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि के देव तो संख्यात होते ही है, आनतादि में ये ही उत्पन्न होते हैं। लिखा ना, कौन मरकर आनतादि में हो गए? मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी। इसलिए इनमें 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का उत्कृष्ट काल संख्यात समय बनने से उक्त प्रमाण कहा है। शेष सुगम। मनुष्य अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवि के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग्रहण, क्योंकि पहले समय में उसको उत्कृष्ट रखना, गुणित कर्मांशिक से आया है, दो चार भव तीर्यंच किए हैं और मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ है, पहले समय में उसका उत्कृष्ट था, बाद में अनुत्कृष्ट, तो एक समय कम क्षुद्र भोग्रहण। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल जयबेन आपको बताना है, ये पल्ले का असंख्यात विभाग क्यों कहा? अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना कहा? एक शुद्र भो। और उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात विभाग, भानुबेन बोलो। एक जीव का लगातार कितने जीव उत्पन्न हो गया इससे? हाँ, आवली के असंख्या विभाग। और एक जीव का अंतर्मूल तो आवली के असंख्या विभाग। दूसरी भाषा में बोलना है, मनुष्य अपर्याप्त ये सांतर मार्गणा है, उस मार्गणा का अधिक से अधिक काल कितना है? तो पल्ले का संख्या था। और मिनिमम काल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा? एक शुद्र भाव प्रमाण तो रहेगा ना, एक या अधिक जीव एक साथ उत्पन्न हुए हैं एक समय के लिए, तो कोई नहीं होगे एक समय में, तो किसी का मनुष्य पर्याप्त भाव पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि 100 जीव एक साथ मनुष्य अपर्याप्त हुए एक समय में, तो कितने काल तक लगातार रहेंगे? मिनिमम एक भव पूरा करेंगे। और फिर हो सकता है कि कोई जीव उसमें उत्पन्न हुआ ही नहीं कुछ काल तक, परंतु एक जीव ने इतना बिताया, फिर दूसरा कोई जीव आया, फिर तीसरा कोई आया, ऐसा अगर लगातार हो तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो एक के लिए अंतर्मूर्त यानी असंख्यात, तो आंवली के असंख्यात भाग के लिए कितना, तो वो निकलेगा पल्ले का असंख्यात भाग। ये वो बाकी झंझट नहीं करना है त्रयोदशी, तो उस मार्गणा का ही उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग है। उसके बाद उसमें अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। अंतर पड़ेगा का अर्थ क्या है? एक भी जीव मनुष्य पर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। कितने काल तक? वो भी एक समय से लेकर पल्ले के, हाँ एक समय से लेकर पल्ले के असंख्या से भाग काल तक। हाँ, म्लेच्छ खंड में नहीं पाया जाता। आर्य खंड की महिला के कुछ भाग, चक्रवर्ती वहां जाएंगे तो वहां भी नहीं, चक्रवर्ती तो यहाँ होंगे, कि वहां के वातावरण में नहीं होते होंगे। आर्यखंड में ही खास बताया है। हाँ, और चक्रवर्ती की सेना जहाँ, उनका जहाँ मुकाम है उसका, हाँ चौदह प्रकार के मनुष्य समूर्चन, वहाँ मनुष्य समूर्चन बताए क्या, तिर्यंश समूर्चन बताए? मनुष्य समूर्चन बताए। ये तो यहाँ दो ही जगह आते हैं, यानी तो जहाँ चक्रवर्ती की सेना है और स्त्रियों के कुछ अंगों में, स्त्रियों में भी नहीं पाए जाएंगे पल्ले के असंख्यात भाग काल तक नहीं पाए जाएंगे। हाँ, हो सकती है। ऐसे भी यहाँ भूभूमि वाले में तो नहीं होगी ना, पर उस समय अन्यत्र तो मनुष्य है ही, मनुष्य नहीं भी है, जैसे विदेह क्षेत्र में तो सर्वदा है, तो नहीं उत्पन्न होते तो कहीं भी नहीं होगे। सांतर मार्गणा का अर्थ वो मगर उसके मुख्यता नहीं है ना, वो तो वहां भी उत्पन्न होते हैं ऐसा लिखा है। देखो नीचे, अभी उत्कृष्ट काल पर लेके संख्या से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है इनकी, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। यानी भले वो मार्गणा का जघन्य काल क्षुद्र भव है, परंतु अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे होगा? नाना जीव है, उत्पन्न हुए हैं, उद्वेलना करते आए हैं, एक समय में उनकी उद्वेलना पूरी हुई, तो उनका जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय घटित होगा, भले मार्गणा अंतर्मुख चलेगी हो। ख्याल में आई बात? हाँ, एक समय। विशेषत मनुष्य अपर्याप्त यह सांतर मार्गणा है, यह संभव है कि इस मार्गणा में नाना जीव क्षुल्लक भव तक ही रहे, इसलिए इस काल में से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का एक समय काल कम कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण बन जाने से, यहाँ यानी पहला समय उत्कृष्ट वाला घटा दो तो बाकी जो है वो अनुत्कृष्ट रहा। एक साथ जन्मे ऐसे जीव लेना है, पॉसिबिलिटी ऐसी लेनी है, इसलिए यहाँ 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग्रहण प्रमाण कहा है, तथा इस मार्गणा का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियां हैं, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाने से उक्त काल प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। ये मनुष्यों की बात हो गई। देवगति में देवों में अभी हमने जघन्य में देव को याद किया था क्या? ये उत्कृष्ट की बात चल रही है। हमने स्पर्शन में कुछ देखा, देवगति में देवों में उत्कृष्ट का प्रकरण। पहली पृथ्वी के समान भंग है, इसी प्रकार पहली पृथ्वी के समान क्यों कहा? कृतकृत्य वेदक है इसलिए। इसी प्रकार सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, इस प्रकार अनाहरक मार्गना तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ सौधर्मादि देवों में भी प्रथम पृथ्वी के नारकियों के समान कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम पृथ्वी के नारकियों के समान भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है। तथा भवनत्रिक में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथ्वी के नारकियों के समान भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है। शेष कथन सुगम। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। उत्कृष्ट काल यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल समाप्त हुआ। सहस्रार के ऊपर क्या कहते हैं? इसी प्रकार सौधर कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए, ये जो बात बताई यहाँ पर, तो आप कहते ऊपर क्यों नहीं लिया? उन्होंने ऐसा लिखा कि यहाँ सौधर्म से लेकर सहस्रार तक ही क्यों लिए? देवगति में देवों में पहली पृथ्वी के समान भंग है बता दिए। हाँ, ऊपर से जो इसी प्रकार आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, ये तो पहले बताया। देखो क्या कहते हैं, क्या बताया था वहाँ? यहाँ तो काल बता रहे हैं, वहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होते, ये नहीं बात। उत्पन्न हो गए तो लगातार कितने हो गए? देखो यहाँ क्या, मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट विभक्ति का उत्कृष्ट काल संख्या समय, 28 के उत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट काल संख्या समय लिया है। ये जो बात है वो उनमें घटित है। अकेला कृतकृत्य नहीं लेना, पूरा सभी प्रकृतियों का भंग लेना, नहीं समझे? सहस्रार तक तो 3 इंच भी जाएंगे और ऊपर 3 इंच जाते पर समय दृष्टि जाते। हमें उत्कृष्ट विभक्ति घटित करनी है तो समय दृष्टि 3 इंच में तो उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्कृष्ट में हमको वो गुणित कर्मों से एक लाना है, वो 3 इंच में लाना है, फिर वो सारी बातें घटित करनी है। तो जो देव में जाने वाला है ऊपर के आनंद प्राणत में, वो तो 5वां गुण स्थान वाला हम घटित करेंगे वहां, तो उसकी तो गुण श्रेणी निर्जरा भी हुई है, तो वो गुणित कर्मांशिक नहीं रहा। तो वहां जाने वाले कौन हो गए? द्रव्यलिंगी मुनि हो गए। तो इसलिए उनका संख्या समय घटित होगा, लगातार जाने वालों की बात है, ख्याल में है नहीं? यहाँ उनका ग्रुप अलग इसलिए बना है, उनमें भी उत्कृष्ट किसके हो गए सम्यक्त्व के बारे में? तो कृतकृत्य वेदक के। कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होते वो बात नहीं है, उसके बारे में तो सब जगह सर्वा सिद्धि तक की भी बात घटित होगी, परंतु यहाँ हमें किस में घटित करना है? अन्य भी प्रकृतियों की बात करनी है। पूरा जो अन्य प्रकृतियों में भी यही कथन होगा जो पहले नरक में होता है, यानी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब है, ऐसे सब में घटित करो। प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। 53 पृष्ठ पर आए। अब जघन्य का प्रकरण है, उत्कृष्ट काल का अर्थ होता है उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल। इसमें हमने जघन्य और उत्कृष्ट दोनों देखे। अभी जघन्य का प्रकरण है कहता, उसका अर्थ क्या है? जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल, उसमें उत्कृष्ट भी देखेंगे जघन्य भी देखेंगे। जघन्य का, जघन्य काल और उत्कृष्ट का। अभी जघन्य अजघन्य का भी आएगा। अब जघन्य तो एक ही समय के लिए रहेगा एक जीव की अपेक्षा, और नाना जीवन की अपेक्षा संख्यात, क्योंकि क्षपणा में होगा, जहां होगा उसको घटित करेंगे भी हम। देखो जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। वह जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल सर्वदा है, क्योंकि उसकी सत्ता तो हमेशा ही पाई जाएगी। इसी प्रकार सब नारकी, यानी यही स्टेटमेंट, यही कथन सभी नारकी, सभी तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जाना चाहिए। इतनी विशेषता है मनुष्य अपर्याप्तकों में। 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। ये संख्यात क्यों कहा? मनुष्य अपर्याप्त भी रहते हुए जघन्य सोचो। अभी गुणित कर्मांशिक मत सोचो। अभी क्षपित कर्मांशिक जीव क्षपणा करने के बदले उलट कर वो मनुष्य अपर्याप्त में गया है। तो क्षपित कर्मांशिक यहाँ उत्पन्न हुआ है, तो संख्यात क्षपित कर्मांशिक जीव है ना। और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण, पहले में जघन्य। और 7-9 कषायों का अंतर्मूर्त प्रमाण, लगातार की बात है ना, तथा सम्यक और असम्यक मिथ्यात्व का एक समय है, क्योंकि उसकी उद्वेलना एक ही समय के लिए, सत्ता वाला आया और पहले ही समय में उद्वेलना कर दी। और सबका उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, क्योंकि इस मार्गणा का ही उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात्व भाग है। इस प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। देखो 7-9 कषायों का अंतर्मूर्त इसलिए कहा, प्रतिपक्ष के बंधक काल में होता है और उसका लगातार बंध तो अंतर्मूर्त तक होगा ना, किसी एक जीव को, और उसका अंतिम समय लेना केवल, तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटेगा बंध काल। क्योंकि हमको अजघन्य का जघन्य काल चाहिए, उत्कृष्ट काल नहीं। सबका उत्कृष्ट काल तो पूरी मार्गणा तक बना रहेगा। नहीं, वहां नहीं, नीचे देखो, फिर पढ़ती हूँ मैं। 5वीं लाइन में मनुष्य अपर्याप्तकों की बात पढ़ रही, फिर दोबारा 28 प्रकृतियों की जघन्य का काल क्या है? एक समय। कब होगा? शुरू में क्षपित पद्धति से आया हुआ है, पहले समय में होगा। तो इसे लगातार कोई ना कोई आता रहेगा जघन्य के साथ पहले समय में, तो संख्यात हो गई। दूसरी बात, अभी अजघन्य की बात है, तो अजघन्य का जघन्य काल एक समय कम क्षुद्र भो, क्योंकि पहले समय में हमने जघन्य देखा, तो रिमेनिंग समय में अजघन्य रहेगा। तो ये किसके बारे में होगा? सम्यक सम्यक मिथ्या तो के उसमें तो एक समय जघन्य घटित होगा, बराबर। अब 7-9 कषायों का जो है वो तो अंतर्मूर्ति के बाद जघन्य होता है, प्रतिपक्ष का बंध करता है, इस अपेक्षा से लेना है, तो वहां भी एक अंतर्मूर्त घटित होता है। इस प्रकार अनाहारक मार्गना तक जाना है। संख्यात क्योंकि क्षपित करने वाले कितने जीव, संख्यात ही इसमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न होने वाले क्षपित कर्मोसिक जीव, इस तरह लेना। किसमें अंतर्मुहूर्त क्षुद्र भाव से तो बड़ा होगा क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा लेने हैं लगातार, एक कोई ना कोई उसका करता रहे तो यानी अंतर्मुहूर्त तक तो जघन्य में जघन्य पाया जाएगा, जघन्य काल और अजघन्य का उत्कृष्ट काल मार्गणा प्रमाण विशेषार्थ। 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के समय होती है। यह संभव है कि एक या अधिक जीव एक समय तक ही इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति करे, और यह भी संभव है क्रम से नाना जीव संख्या समय तक इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति करते रहे। इसलिए ओव से इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा है। इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। अपने अपने स्वामित्व को देखते हुए सब नारकीय आदि मार्गणाओं में यह काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओग के समान जानने की सूचना की है। मात्र मनुष्य अपर्याप्तकों में विशेषता है, बात यह है कि वह सांतर मार्गणा है, इसलिए उसमें सब प्रकृतियों की अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अलग अलग प्राप्त होता है, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। विशेष विचार स्वामित्व को देखकर कर लेना चाहिए। शेष कथन सुबह में ये प्रतिपक्ष वाले हैं, अंतर्मूर्ति के बाद जाके वो जघन्य होती है, इसलिए ये बताया। इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा काल समाप्त हुआ। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देखेंगे। अंतरम नाना जीवे ही सव कम्माणम जहन्य एक समयो उपकस्येन अनंत कालम असंख्येज्जा पोगल परियट्टा। किसका काल? जघन्य का। अंतर नाना जीवों की अपेक्षा सर्व कर्मों का जघन्य अंतर एक समय है। कर्मों का जघन्य अंतर की क्या बात है, उसका अर्थ क्या है? सभी कर्मों के जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर। यहाँ वो बार बार जघन्य प्रदेश विभक्ति का नाम नहीं लिखा है। हमारा प्रकरण क्या है? जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर चल रहा है, वो भी नाना जीवों में देख रहे हैं। तो जघन्य अंतर हाँ काल हमने देखा जघन्य उत्तर, जो सर्वदा काल है उसमें कहेंगे अंतर नहीं है, और जिसका काल हमने लगातार देखा था उसका अंतर यहाँ बताएंगे। अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा, और जघन्य का अंतर नहीं होगा, होगा हाँ। तो नाना जीवों की अपेक्षा सब कर्मों का जघन्य सब यानी 28 जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। नाना जीवन की अपेक्षा लेना ही है। इस सूत्र से सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अंतर को उच्चारणा के अनुसार बतलाते हैं। यथा ये यया हुआ यथा अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देखेंगे। अभी उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। यानी एक समय के लिए किसी ने उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नहीं की थी, किसी की भी नहीं थी, और फिर हो गई तो जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। यानी नाना जीवन की बात कर रही हूँ, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तक किसी ने उत्कृष्ट किया ही नहीं। उत्कृष्ट अंतर हो, प्रदेश विभक्ति की बात चल रही है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर काल नहीं है क्योंकि वो सदाकाल पाई जाती है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त जीवों में 28 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये मार्गणा का अंतर इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। ख्याल में आई बात? विशेषार्थ देखो, काल में हमने जघन्य काल, मनुष्य पर्याप्त मार्गणा का जघन्य काल एक शुद्र भोग, और उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात होगा। अभी अंतर में देख रहे हैं, जघन्य अंतर एक समय है, यानी भले पहले अनेक जीव थे मनुष्य पर्याप्त, अब सभी जितने थे सब मर गए, अब कोई जीव रहा नहीं, तो मिनिमम कितना अंतर हो सकता है? एक समय। एक समय के बाद फिर वहाँ कोई ना कोई जीव उत्पन्न हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और लगातार लंबे काल तक कोई जीव मनुष्य पर्याप्त नहीं है तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक कोई नहीं। विशेषार्थ उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति गुणित कर्मांशिक जीवों के होती है। यह संभव है कि गुणित कर्मांशिक विधि से आकर एक या नाना जीव एक समय के अंतर से 28 प्रकृतियों की अलग अलग उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करे और अनंत काल के अंतर से करे, या तो एक समय के अंतर से करे या अनंत काल के अंतर से करें, अपनी अपनी अलग अलग लेना हर एक। इसलिए यहाँ ओग से और गति मार्गणा के सब भेदों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर, यानी ओग से भी कहेंगे और प्रत्येक गति में भी कहेंगे, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। यहाँ सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, यह स्पष्ट ही है। मात्र मनुष्य पर्याप्त यह सांतर मार्गणा है, इसलिए इसने इसमें अपने अंतरकाल के अनुसार 28 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब जघन्य का प्रकरण, अभी हमने कौन सा देखा? उत्कृष्ट देखा, अंतर देख रहे हैं ना, उसमें नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देख रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य में कितना अंतर पड़ेगा? हाँ, एक जीव की अपेक्षा जघन्य प्रदेश विभक्ति का कितना अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक बार जघन्य करने के बाद फिर दोबारा जघन्य नहीं होगा ना, वो सपना की सपना में होता है ना जघन्य। आप उत्कृष्ट की बात सोच रहे, जघन्य की बात सोच रहे ना। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जिस प्रकार उत्कृष्ट पद के आश्रय से अंतरकाल कहा है, उस प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल की प्ररूपणा करनी चाहिए। जघन्य प्रदेश विभक्ति, यह नाना जीवन की अपेक्षा लग रही बात, जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपित कर्मांशिक जीव के होती है, इसलिए सब प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर अजगण्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समान बन जाने से उनके समान जाने की सूचना की है। इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा अंतरकाल समाप्त हुआ। यहीं रुकेंगे हम, क्योंकि अभी नया विषय चलेगा सन्निकर्ष वाला, वो कल से शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान।